पृष्ठ संख्या 11 होगा आधुनिक काव्य यात्रा के सोपान। आधुनिक काल 1850 ईस्वी तक आते आते हिंदी कविता में अभिनव परिवर्तन के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। रीति कविता का वह वृक्ष जिसे 200 वर्षों पूर्व आचार्य केशवदास ने बड़े परिश्रम से लगाया था, देव बिहारी, सेनापति मतिराम भिखारी एवं पद्माकर आदि के प्रतिभा जल से अभिसिंचित हो उत्कर्ष और प्रवणता को प्राप्त हुआ, वह अब धीरे धीरे सूखने लगा था। दरबारी सम्मानों के भार से बोझिल मस्तिष्क वाले कलाजीवी कवियों का कोकिल कंठ भी बंद पड़ने लगा था, और इस प्रकार रीतिकाल के समूचे 200 वर्षों के इतिहास में कवियों के अलंकार, चमत्कार, भाषा तथा कविता की बाजीगरी में परिवर्तन हो चला था। राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण भारतीय जनमानस तथा हिंदी साहित्य रूढ़िवादिता के कूचे से निकलकर नवीन प्रशस्त राह पर चल निकला था। आधुनिक कविता ने अपनी यह यात्रा जिन सोपानों के माध्यम से तय की, वह अधोलिखित हैं। एक, भारतेंदु युग; दो, द्विवेदी युग; तीन, छायावाद युग; चार, छायावादोत्तर युग। पृष्ठ संख्या 12। एक, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग खड़ी बोली हिंदी का प्रस्थान बिंदु है। रीतिकाल के अवसान और आधुनिक काल की आरंभिक पर स्थितियों की संक्रमणीय स्थितियों के बीच साहित्यिक क्षितिज पर बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय एक महान घटना है। उनके नेतृत्व में जो साहित्य रचा गया, आचार्य शुक्ल ने उसे आधुनिक काल के प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है, और विद्वानों ने 1850 ईस्वी से लेकर 1900 तक के समय को उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग कहा है। भारतेंदु युग नव्य और पुरातन के संगम का युग था। इस युग का साहित्यकार ना तो पुरानी बातों को पूरी तरह से छोड़ सका था और ना ही नए को पूरी तरह से स्वीकार। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि इन्वर्टेड कामा, भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रक्रिया में कुछ तत्व ऐसे थे जो मरणशील थे और वह नष्ट हो रहे थे। इन्वर्टेड कामा बंद। भारतेंदु स्वयं कई पुराने प्रतिमानों को खंडित कर नए प्रतिमान गढ़ रहे थे। प्रेमघन सर्वस्व प्रथम भाग के वक्तव्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यूनाइटेड गामा, भारतेंदु युग प्राचीन और नवीन का संधिकाल था। नवीन भावनाओं को लिए हुए भी उस काल के कवि देश की परंपरागत चिर संचित भावनाओं और उमंगों से भरे थे। भारतीय जन के विविध रूपों की मार्मिकता उनके मन में बनी थी। उस जीवन के प्रफुल्ल स्थल उनके हृदय में उमंग उठाते थे। पाश्चात्य जीवन और पाश्चात्य साहित्य के ओर उस समय इतनी टकटकी नहीं लगी थी कि अपने परंपरागत स्वरूप से दृष्टि एक बारगी हटी रहे। होली, दिवाली, विजयदशमी, रामलीला, सावन के झूले आदि अवसर पर उमंग की जो लहरें देश भर में उठती थी, उनके हृदय की उमंगें भी उसमें योग देती थी। उनका हृदय जनता के हृदय से विच्छिन्न ना था। यूनाइटेड का मापन। इन्हीं अर्थों में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग के साहित्य को जनवादी साहित्य कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने यह माना है कि यूनाइटेड कामा भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर सन 57 की राज्य क्रांति की अपेक्षा बंगाल के नवजागरण का प्रभाव अधिक था। राजा लक्ष्मण सिंह के संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली तथा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बचते हुए भारतेंदु ने मध्यम मार्ग निकालते हुए जिस खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा की, उससे हिंदी नई चाल में ढल गई। भारतेंदु व्यक्ति नहीं, संस्था थे। अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा के बल पर उन्होंने साहित्यिक लेखकों का एक ऐसा मंडल तैयार किया जो उनके मरणोपरांत भी हिंदी की सेवा करता रहा। आचार्य शुक्ल ने अपने पृष्ठ संख्या 13 इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम ठाकुर, जगमोहन, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 ईस्वी 1885 में ही हो गया था, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। नए नए विषयों का उन्मेष, नई नई विधाओं का श्री गणेश तथा खड़ी बोली में पत्र पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु के रचना मंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैग्नीज, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी का संपादन स्वयं भारतेंदु ने किया। उनके अतिरिक्त ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी एवं नागरी नीरद, प्रेमघन, बनारस अखबार, शिवप्रसाद सितारे हिंद संपादित इस युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, जिनके माध्यम से इन लेखकों ने समाज की अनेक बुराइयों पर प्रहार किया तथा ज्ञान के नए आलोक से समाज का परिचय कराया। उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, निबंध आदि विविध गद्य विधाओं के प्रारंभ के कारण ही शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, जिसका श्रेय भी भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों को जाता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इन्वर्टेड कामा बंद। उन्होंने नाटकों से इस गद्य परंपरा का प्रवर्तन माना है। साहित्यिक दृष्टिकोण से भारतेंदु युग के प्रदेय को बिंदुवार निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। एक, खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा, हिंदी नई चाल में ढली। दो, नवीन गद्य विधाओं का प्रवर्तन, साहित्यिक विषयों का विस्तार। तीन, नूतन और पुरातन काव्य प्रवृत्तियों का संगम, प्रथम और द्वितीय उत्थान। चार, प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, सामयिक विषयों के प्रति जागरूकता, कवि गोष्ठियों की स्थापना, कविता की लोकप्रियता को बढ़ावा। भारतेंदु युग में भाषा का द्वैत रूप दिखाई पड़ता है, गद्य में खड़ी बोली और काव्य में ब्रजभाषा। भारतेंदु सहित उनके मंडल के रचनाकारों ने पृष्ठ संख्या 14, गद्य तो खड़ी बोली में लिखा लेकिन कविता ब्रजभाषा में। यही कारण है कि उनके काव्य में भक्ति और रीति युगीन काव्य प्रवृत्ति का सहज ही प्रभाव देखा जाता है। इस युग का कवि तत्कालीन देश की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सामयिक समस्याओं का बड़े ही व्यंग्य निपुणता और वाक्पटुता के साथ यथार्थ चित्रण करता है। श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, रीति नीति, हास्य व्यंग्य, समस्या पूर्ति, प्रकृति चित्रण, समसामयिक विषयों, राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति आदि विविध विषयों का वर्णन कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, मालिनी, सरसी, त्रोटक, बरवे, छप्पे, कुंडलिया आदि के अतिरिक्त उर्दू के भी अनेक छंदों जैसे पहेलियों, मुकरियों तथा कजरी, चैता, बसंत, लावणी आदि अनेक लोक प्रचलित काव्य रूपों में भारतेंदुयुगीन कवियों ने अपने युग की काव्य संवेदना को मुखरित किया। आर्थिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने इस देश में रेल, डाक, तार का जाल बिछाया ताकि उनकी आक्रमणकारी फौजें आवश्यकता पड़ने पर हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक सुगमता से आ जा सकें। उनकी इस चाल को पहचानते और चुटकी लेते हुए भारतेंदु ने लिखा, धन्य सहबवा जौन चलाइस रेल, मानो जादू किहिस दिखाइस खेल। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी एक प्रकार से तत्कालीन भारतवर्ष ही हैं, जिसमें राजनीतिक विफलता का कटु अंकन है। ऐसा शासन जहाँ का राजा ही चौपट राज है, जहाँ कपास और कपूर में अंतर नहीं किया जाता, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न की जय बास। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि अंधेर नगरी भारतेंदु का सबसे लोकप्रिय प्रहसन है। यह अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य ही है, जहाँ की कानून व्यवस्था, जनता का अमन चैन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने युग के जातिगत संघर्ष को भी दिखाया है। 19वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जाना तथा धन का विदेह बहिर्गमन भारतेंदु को चिंतन कराती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, भारत दुर्दशा में वह पुनः लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चले जात इहे अति खुआरी, ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। पृष्ठ संख्या 15। नए जमाने की मुकरी पेश करते हुए भारतेंदु ने अपने युग की अंग्रेजों की उपनिवेशवादी शोषण आधारित व्यवस्था पर बहुत ही सूक्ष्म एवं तीखा व्यंग्य किया है। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी कह तन मन धन मूसें, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रेडला स्वागत, प्रेम घन के जीर्ण जनपद तथा दुर्दशा दत्तापुर आदि में उस समय के समाज की आर्थिक विडंबना का मर्म स्पर्शी चित्रण है। इन विषयों के माध्यम से इन कवियों ने भी कविता के विषय को विस्तार रूप दिया। आचार्य शुक्ल ने माना है कि इन्वर्टेड कॉमा हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। इन्वर्टेड कॉमा बंद। खड़ी बोली को हिंदी में चिर प्रतिष्ठित कर भारतेंदु आधुनिक हिंदी के निर्माता बन गए। पराधीनता के युग में भी उन्होंने देशवासियों को चेतावनी दी कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान कविता में उन्होंने निज धर्म, निज देश और निज भाषा की वकालत की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। भारतेंदु ने साहित्य को लोकोन्मुखी और लोकमंगलकारी बनाया। यद्यपि कि उनकी कविताओं में राजभक्ति के स्वर भी देखने को मिलते हैं, पर उसके पीछे राष्ट्रीयता और देशभक्त की भावना ही जुड़ी थी। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन बिल्कुल संगत प्रतीत होता है कि इन्वर्टेड कॉमा नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। इन्वर्टेड कॉमा बंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं नामक ग्रंथ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा, भारतेंदु ने जिस संस्कृति का निर्माण किया वह जनवादी थी। उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य, शिष्टाचार और पुरोहितों, मौलवियों का इजारा तोड़ने के उपाय बताए, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, कुलीनता, जाति प्रथा, छुआछूत आदि का जोरदार खंडन किया। लोगों ने धार्मिक अंधविश्वासों की कड़ी आलोचना की और स्त्री शिक्षा पर खास तौर से जोर दिया। इस जनवादी संस्कृति के तत्व भारतेंदु को अपने देश से मिले थे, वे उनके अपने चिंतन के फल थे। इन्वर्टेड कॉमा बंद। कमोबेश यही विशेषताएं भारतेंदु मंडल के लगभग सभी रचनाकारों की हैं। अपने थोड़े से जीवन काल में अपने प्यारे देश के विकास के लिए भारतेंदु ने उन्नति के जो स्वप्न देखे वह आगे चलकर पूरे हुए। कवि वचन सुधा का सिद्धांत वाकई ही था। पृष्ठ संख्या 16। खल गगन सो सज्जन दुखी, मति हो ही हरि पद मति रहे, उपधर्म छूटे स्वत्व निज, भारत गहे कर दुख वहे, बुध तजहि मत सर नारी नर, सम हो ही जग आनंद लहे, तज ग्राम कविता सुकवि जन की अमृत बानी सब कहें। कवि, नाटककार, निबंधकार, आलोचक तथा पत्रकार आदि अनेक रूपों में भारतेंदु ने साहित्य और देश की सेवा की और उनका अनुकरण उनके युग के लेखकों ने भी किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि यह बिना अत्युक्ति के कहा जा सकता है कि भारतेंदु की आत्मा प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट आदि समर्थ लेखकों में उद्दीप्त होकर देश और साहित्य की सेवा करती रही। इस प्रकार काव्य के अतिरिक्त निबंधों, नाटक, कहानियों, लेखों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से भारतेंदु युग के रचनाकारों ने देश को जगाने का काम किया। कविता के विषय पुराने होते हुए भी यहाँ युग अनुरूप नए रूप में प्रस्तुत किए गए। खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर हो गया। आगे चलकर जिसका प्रयोग काव्य में भी होने लगा। विविध गद्य विधाओं के प्रवर्तन के साथ साहित्य का क्षेत्र भी व्यापक होता गया और उसकी संवेदना जनता और उसकी समस्याओं से जुड़ती गई। रीतिकाल के बाद पहली बार श्रृंगारी और दरबारी साहित्य यहाँ लोकोन्मुखी हुआ। धार्मिक सुधार संस्थाओं, कवि गोष्ठियों की स्थापनाओं आदि के द्वारा पुनर्जागरण और नूतन की एक लहर से चल निकली। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारतेंदु युग के काव्य साहित्य को पढ़ने से विचित्र कोलाहल का अनुभव होता है। विभिन्न धाराओं के एक साथ मिलने से पाठकों को आकाशभेदी कलकल ध्वनि सुनाई पड़ती है। कुछ लोग नायिकाओं के नखशिख वर्णन में लगे हैं, जो कुछ प्रतिभावान समस्या पूर्ति में चमत्कार दिखा रहे हैं। अन्य कवि महामारी, अकाल, टैक्स पर लोकगीत रच रहे हैं और कुछ लोग कविता में गद्य की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। दरबारी चेतना और नवचेतना का संघर्ष कविता में ही सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि इन्वर्टेड कामा भारतेंदु युग का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य रीतिकाल का काव्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उसमें मनुष्य के प्रत्याहिक सुख सुविधाओं के जंजाल पृष्ठ संख्या 17 से मुक्त करके शाश्वत देवत्व के पवित्र लोक में ले जाने की महत्वाकांक्षा लुप्त हो चुकी थी। भारतेंदु ने कविता को इन दोनों ही प्रकार की अधोगतियों के पंथ से उबारा। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकाल कर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। उनका समूचा काव्य प्राणधारा का उच्छल वेग है। भारतेंदु जीवन प्राणधारा के मूर्त विग्रह थे। इन्वर्टेड कॉमा बंद।